नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। आज के अंक में खेल जगत की तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ सभी हुसैन। सभी जी, स्पोर्ट्स कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
धन्यवाद प्रशांत जी।
आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पांच मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच कल से डरबन में। फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताबी मुकाबला आर वैशाली ने अपने नाम किया और यूएस ओपन फिकल बॉल चैंपियनशिप में अर्जुन सिंह और आदित्य सिंह की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। चर्चा की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। मुंबई में आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 12वें ओवर में 2 विकेट पर 123 रन बना लिए हैं। पंजाब ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। अंक तालिका में मुंबई 9वें और पंजाब तीसरे स्थान पर है। 12 पे 2 विकेट गिर गए थे एक टाइम पर मुंबई का, उसके बाद अच्छी वापसी की है। क्विंटन डिकॉक 70 रन बनाकर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, वहीं उनका अच्छा साथ निभा रहे हैं नमनधीर।
नहीं बिल्कुल, जिस तरीके से शुरुआत में उन्होंने 2 विकेट खो दिए थे, जैसे रिकल्टन का और सूर्य कुमार यादव का जो विकेट चला गया, तो एक तरीके से प्रेशर में आ गई मुंबई इंडियंस टीम, क्योंकि 12 पे 2 विकेट गिर गए। और ज्यादातर जो हम आईपीएल टीम्स का देख रहे हैं कि पावर प्ले में मैक्सिमम स्कोर करना पसंद करती हैं, क्योंकि विकेट जो है वैसे काफी उसमें उछाल रहता है और बॉल भी बहुत अच्छा बल्ले पर आती है। तो अब ऐसे में जब 2 विकेट डाउन हो जाते हैं तो आपका होता है रिकवरी का एक वो फेज शुरू हो जाता है कि अब आपको पहले थोड़ा रिकवर करना है, पहले थोड़ी इनिंग्स स्टेबलाइज करनी है और उसके बाद फिर जैसे कि T20 क्रिकेट का हम गेम देखते हैं कि उसके बाद फिर आपको वो हिटिंग करती रहनी है कॉन्स्टेंटली। लेकिन जिस तरीके से एक छोर जो है डिकॉक ने संभाल लिया है और बहुत अच्छे लय में वो दिख भी रहे हैं और बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं और काफी सारे वो रन भी बटोर रहे हैं, तो ऐसे में मतलब ये जरूरी था कि एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन का चलना मुंबई इंडियंस के लिए, और डिकॉक ने जैसा हम देख ही रहे हैं कि बहुत अच्छी बल्लेबाजी भी कर ही रहे हैं। तो एक मुंबई इंडियंस, तो देखिए मुंबई इंडियंस की जो कैंपेन है ना वो थोड़ी सी डिरेल्ड हो चुकी है। वो अब आपने जैसा अभी बताया कि 90 पायदान पर है, तो उनको है ना ये अब जो आगे आने वाले जितने भी मैच है इंक्लूडिंग ये वाला मैच भी उनको जीतना होगा और किसी तरीके से उनको ये अपना जो टीम कॉम्बिनेशन है ये बिल्कुल अच्छा करना होगा, क्योंकि मुंबई इंडियंस जो है 5 बार की चैंपियन टीम रही है और हमेशा अच्छा प्रदर्शन आई है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि ना अंक तालिका में वो सबसे नीचे थी, वहां से उन्होंने फाइनल तक का सफर तय किया है, कई एक दो एडिशंस में ऐसा भी हुआ है। तो मुंबई इंडियंस और वैसे भी स्टार स्टडेड टीम है, हम देख रहे हैं कि एक से एक मतलब जिसे कहते हैं चाहे वो बल्लेबाजी में हो या गेंदबाजी में, एक से एक है ना इनके स्टार प्लेयर्स हैं। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस को अब चाहिए होगा कि किसी तरीके से भी अब मैचेस जीते, टीम कॉम्बिनेशन सही करे, जो भी उनके मैच विनर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करे और अंक मतलब जो अंक तालिका है उसमें ऊपर ऊपर आना शुरू करे, क्योंकि अब ये हम कह सकते हैं कि मिडिल ऑफ द अब टूर्नामेंट आ गया है और अब हर मैच जिसे कहते हैं इंपॉर्टेंट हो गया। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो उन्होंने शुरुआत में 2 विकेट चटकाए, मोमेंटम उनके साथ था, एक उनके जो गेंदबाज है उन्होंने एक बहुत ही अच्छी जो टीम को शुरुआत भी दी, लेकिन कहीं ना कहीं उसके बाद जो है डीकॉक ने मोर्चा संभाल लिया। मुंबई इंडियंस के लिए काफी अच्छी बल्लेबाजी वो कर ही रहे, तो ऐसे में पंजाब किंग्स को वैसे मुझे मतलब उनको है ना थोड़ा सा एक स्कोर पर रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए मुंबई इंडियंस को, ताकि फिर वो चेज जो है वो कर पाए, क्योंकि वैसे तो T20 क्रिकेट में ड्यू कंडीशन ये सब इतना मैटर नहीं करती है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ये रहता है कि अपना एक एक रिस्ट्रिक्ट कर दे एक स्कोर पे, ताकि फिर वो चेज कर पाए।
जी बिल्कुल, जैसे आपने गेंदबाज की बात की, अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 4 रन देकर और सिर्फ 2 की इकोनॉमी रेट से 2 विकेट झटका है। वहीं आप लेगेसी की बात कर रहे थे मुंबई इंडियंस की, 2020 में लास्ट टाइम चैंपियन बनी थी और कई बार अंक तालिका में नीचे रहने के बावजूद चैंपियन भी बनी। उस टीम को जो चैंपियन बनाया था वो खिलाड़ी रोहित शर्मा आज खेल नहीं रहे टीम में, तो कितना फर्क पड़ता है खेमे में कि एक बल्लेबाज, ऐसा बल्लेबाज जिसने इस टीम को चैंपियन बनाया, अच्छी कप्तानी की, हालांकि अभी वो कप्तान नहीं, लेकिन उनके ना होने से कितना फर्क पड़ेगा।
नहीं रोहित शर्मा देखिए इतने एक वेटरन एक्सपीरियंस्ड बल्लेबाज हैं, मतलब उन्होंने इतने सालों तक जिसे कहते हैं मुंबई इंडियंस को लीड किया, टाइटल्स जितवाए उन्होंने, उन्होंने मतलब कि एक तरीके से कहते हैं लीडरशिप जो कहते हैं ना वो रोहित शर्मा की, जो हम आज भी सब अगर हम मुंबई इंडियंस को जानते भी हैं तो रोहित शर्मा का नाम सबसे पहले जहन में आता है। तो रोहित शर्मा की देखिए एब्सेंस तो जरूर खली खली होगी और वो दिख भी रहा है कि जब दो विकेट उन्होंने ना जल्दी खो दिए, क्योंकि रोहित शर्मा का हमेशा से रहा है कि वो स्टेबलाइज करते हैं इनिंग्स, वो उनका एग्रेसिव अप्रोच भी है, हम तो उनके पुल शॉट के सभी कायल हैं कि
जी
जब वो पावर प्ले में वो जब अपने चौके छक्के लगाते हैं तो हम सभी देखते हैं कि जब वो एक बार लय में आ जाते हैं तो रोकना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में रोहित शर्मा जैसे नहीं खेले इस बार और टीम ने थोड़े से बदलाव करने की कोशिश करे तो उसमें टीम कहीं ना कहीं कमी जरूर खली, जब जब भी आपके ना 12 रन पे 2 विकेट गिर गए, बट मेरे को लगता है कि रोहित शर्मा आगे आने वाले मैच में जरूर टीम के साथ जुड़ जाएंगे।
वहीं अहमदाबाद में कल गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स आमने सामने होंगे। वहीं कल खेले गए मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। पेश है एक रिपोर्ट।
विजयी रथ पर सवार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कल लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी लखनऊ शुरुआत से ही संघर्ष करती नजर आई और केवल 35 रन पर ही 2 विकेट गवा दिए। कप्तान ऋषभ पंत जॉश हेजलवुड की गेंद पर चोटिल होकर रिटायर्ड हर्ट हो गए। निकोलस पूरन भी 1 रन ही बना सके। मिशेल मार्श ने 40, आयुष बडोनी ने 38 और मुकुल चौधरी ने 39 रन का अहम योगदान दिया। लखनऊ की पूरी पारी सिर्फ 146 रन पर ही सिमट गई। बेंगलुरु की से रसिक सलाम डार ने 4, भुवनेश्वर कुमार ने 3, कुणाल पांड्या ने 2 और जॉश हेजलवुड ने 1 विकेट लिया। 147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी आरसीबी ने ताबड़तोड़ शुरुआत। हालांकि फिल सॉल्ट के 7 रन पर आउट होने के बावजूद बेंगलुरु ने रन गति कम नहीं होने दी। विराट कोहली ने 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 49 रन की उपयोगी पारी खेली। वहीं कप्तान रजत पाटीदार के 27 और जितेश शर्मा के 23 रन की धमाकेदार पारी ने लखनऊ को मुकाबले से लगभग बाहर कर दिया। बेंगलुरु ने 29 गेंद शेष रहते 5 विकेट पर ही आसानी से ये लक्ष्य हासिल कर लिया। हेजलवुड को उनकी शानदार गेंदबाजी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज खलील अहमद चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो गए। खलील ने सीएसके की तरफ से अभी तक सभी 5 मैच में हिस्सा लिया था। 14 अप्रैल को कोलकाता के साथ मुकाबले में खलील को चोट लगी थी। धीरे धीरे सीएसके ट्रैक पर आना शुरू ही हुई थी और अब ये खबर खराब ये जो खबर आ गई है सीएसके के लिए। पहले एमएस धोनी एक भी मुकाबला खेल नहीं सके और अब खलील अहमद भी
नहीं। बिल्कुल, खलील अहमद का चोटिल होना और उसके बाद उनका पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाना ये काफ़ी बड़ा सेटबैक है चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, क्योंकि जिस तरीके के हम देख रहे हैं कि वो चाहे डेथ ओवर्स हो या मिडिल ओवर्स हो, जिस तरीके की वो गेंदबाजी करते हैं खलील अहमद, वो काफ़ी जो सीएसके मैनेजमेंट है उनका काफ़ी विश्वास है खलील अहमद पर। तो एक उनके बाहर होने से कहीं ना कहीं अब टीम को एक अच्छा गेंदबाजी का है ना विकल्प ढूंढना होगा। और जहां आपने बात करी धोनी की, तो सभी लोग वेट कर रहे हैं कि कब है ना धोनी टीम के साथ जुड़ेंगे और कब अपना पहला मैच इस सीजन का खेलेंगे, तो वो सभी लोग उसका वेट करें। तो और ऐसी सीएसके मैनेजमेंट से खबरें भी आ रही हैं कि जल्दी अब जो धोनी है वो टीम के साथ जुड़ेंगे।
बात कर लेते हैं महिला क्रिकेट पर भी। महिला क्रिकेट में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का पहला मैच कल डरबन में खेला जाएगा। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, एक दिवसीय विश्व कप जीतने के बाद उनकी टीम आत्मविश्वास से भरी हुई है और आगामी विश्व कप की तैयारियों में लगी हुई है। आगामी विश्व कप जो 12 जून से 5 जुलाई तक खेले जाने हैं, उसके लिए ये जो श्रृंखला है कितना अहम होगा कॉम्बिनेशन के मद्देनजर भी और विश्व कप के मद्देनजर भी।
ये वाकई में काफी इंपॉर्टेंट एक सीरीज है, 5 मैच सीरीज जो इंडिया अब कल से खेलने जा रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप अब नजदीक ही है। T20 वर्ल्ड कप में भारत है ना, क्योंकि एक बहुत जिसे कहते हैं कि विश्व स्तरीय टीम है, हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंदाना, ये हम सब जानते हैं कि इन्होंने कई सालों तक टीम का नेतृत्व किया है। तो ऐसे में ये टूर्नामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और साउथ अफ्रीका बहुत ही डोमिनेटिंग टीम है, उनकी कंडीशंस है, उनकी कंडीशंस में वैसे उनको हराना मुश्किल भी होगा, लेकिन इस सीरीज से कहीं ना कहीं भारत को ये पता चलेगा कि किस क्या टीम, जैसा आपने बताया भी कि कॉम्बिनेशन की बात करी, तो हाँ क्या टीम कॉम्बिनेशन रखना है, कौन से ऐसे बल्लेबाज है जो T20 वर्ल्ड कप में भारत को एक अच्छी सजीवी शुरुआत दिला सकते हैं, मध्यम क्रम संभाल सकते हैं, और कौन से ऐसे गेंदबाज है और ऐसे विकल्प हैं जो उनके लिए मतलब कि जब जरूरत पड़े तो विकेट चटका भी सकते। तो उस लिहाज से ये फाइव मैचेस की सीरीज है वो इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी भारत ने अपनी लास्ट जो T20 सीरीज है फैब में खेली थी।
जी, बात कर लेते हैं शतरंज पर। भारत की स्टार शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने कल फिडे महिला कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतकर इतिहास रच दिया। वैशाली इस साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन जू वेंजुन को चुनौती देंगी। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
24 वर्षीय वैशाली ने फाइनल राउंड में यूक्रेन की कातेरीना ल्यांगो को सफेद मोहरों के साथ हरा कर 14 में से 8.5 अंक के साथ खिताब अपने नाम किया। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में एकाग्रता और प्रभावी खेल का प्रदर्शन करते हुए अपने प्रतिद्वंदियों पर जीत दर्ज की। टूर्नामेंट की शुरुआत वैशाली ने कम रेटिंग के साथ की थी, लेकिन शानदार प्रदर्शन से उन्होंने फाइनल अपने नाम किया। वैशाली ने निर्णायक मुकाबले में बेहतरीन रणनीति अपनाई। शुरुआती चालों में ही उन्होंने बढ़त बना ली, जिसे उन्होंने पूरे मैच में बरकरार रखा। मिडल गेम में सटीक चाल चलते हुए उन्होंने अपने प्यादे की बढ़त को जीत में बदल दिया। भारत की दिव्या देशमुख ने कजाकिस्तान की बीबी सारा अस्सेवयेवा के खिलाफ ड्रॉ खेला, जिससे वैशाली की जीत पक्की हो गई। अब वैशाली की नजरें इस साल होने वाली विश्व चैंपियनशिप को जीतकर नया कीर्तिमान बनाने पर होंगी। स्पोर्ट्स कैन के लिए शक्ति सिंह।
दोनों ही वर्ग में भारत के खिलाड़ी खेलते नजर आएंगे। मेंस वर्ग में ऑलरेडी चैंपियन है डी गुकेश, जिनको टक्कर देंगे जावो खेर सिंदारो। वहीं आज जो उन्होंने खिताब जीता है वैशाली ने, उनके लिए मौका होगा चैंपियन बनने का।
बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत है, ना केवल सिर्फ वैशाली के लिए है, बाकी इंडिया की जो चेस के लिए भी एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कैंडिडेट जो है वो सेकंड बिगेस्ट टूर्नामेंट माना जाता है चेस की, उस वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद चेस में। तो कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतना अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और उसके साथ साथ आपकी वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए आप क्वालिफाई कर गए, या आप जो वर्ल्ड चैंपियन है उनको आप अब चैलेंज करने के लिए है ना, मतलब कि क्वालिफाई कर गए, तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं कि कोनेरो हम्पी जो थी वो लास्ट थी 2011 में, जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था, और उस टाइम पर जो उस टाइम की रीनिंग वर्ल्ड चैंपियन थी उनको उन्होंने टक्कर दी थी, हालांकि वो खिताब जीत नहीं पाई थी। लेकिन जो इस बार आर वैशाली से काफी उम्मीद है, क्योंकि देखिए कितना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया, क्योंकि शुरुआत में बिल्कुल उनकी वो लय पकड़ नहीं पा रही थी, उनकी जो कैंपेन है वो बिल्कुल भी है ना उस तरीके से लग नहीं रहा था कि वो है ना, मतलब इस तरीके से फाइनल पे पहुंच के या कैंडिडेट जीत पाएंगी। एक तो लोएस्ट रैंक थी जी। और उनसे कई जो अच्छी हायर रैंक जो थी वो प्लेयर्स उनका है ना काफी अच्छे चांसेस, क्योंकि जो जब ये कैंडिडेट शुरुआत हुई थी तो सबकी निगाहें ज्यादा तो आर प्रगनंदा पे थी, वो लग रहा था कि शायद एक ऑल इंडिया जो है ना वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हो सकता है डी कुकेश और आर प्रगनंदा पे, तो ऐसे में जो लाइमलाइट से वो दूर रह गई वैशाली। और देखिए जहां आर प्रगनंदा इस बार अच्छा नहीं कर पाए प्रदर्शन और कैंडिडेट्स में वो काफी नीचे फिनिश की, वहीं उनकी जो सिस्टर है कहीं वैशाली, उन्होंने सारी जितने भी जिसे कहते हैं ना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन सबको ताक में रखते हुए उन्होंने वो जीत अर्जित करी। और लास्ट में भी देखिए उन्होंने 8.5 उनके पॉइंट्स थे, तो कितना अच्छा उन्होंने प्रदर्शन किया शुरुआत, मतलब जब शुरुआत उनकी लड़खड़ा गई थी। तो ऐसे में अभी आर वैशाली कहते भी हैं आर वैशाली के लिए कि एक बार अगर अपने वो जोन में आ जाती हैं तो फिर वो नहीं छोड़ती हैं, कि फिर उनका यही रहता है कि मुझे वो खिताब जीतना ही जीतना, और ये हमने कई बार वैशाली के उस गेम में देखा भी है। तो एक लाजवाब प्रदर्शन रहा है, और ये इंडियन चेस के लिए खासतौर से वुमेन चेस के लिए तो एक ये स्वर्णिम अध्याय उन्होंने लिख दिया है।
जी बिल्कुल, और उम्मीद कर रहे हैं कि डी गुकेश की तरह वो भी वर्ल्ड चैंपियन बने। बात कर लेते हैं पिकल बॉल पर। भारत के अर्जुन सिंह और आदित्य सिंह ने यूएस ओपन पिकल बॉल चैंपियनशिप में पुरुष डबल्स का स्वर्ण पदक जीत लिया है। फाइनल में भारतीय जोड़ी ने जे मेओड और डब्ल्यू लिन को 9-11, 11-2, 11-7 से हराया। वहीं पुरुष डबल्स के 4.5 श्रेणी में पंथ ठक्कर और अथर्व शेठ ने रजत पदक जीता। उन्होंने कायल एप्पल और माइकल वैन ड्यूसन को एक करीबी मुकाबले में 8-11, 9-11 से हराया। भारत जो है वो लॉन बॉल की बात कर ले, सेपक टैक्रो की बात कर ले, या पिकल बॉल की भी, हर खेल में सिर्फ अब क्रिकेट हॉकी बैडमिंटन तक ही सीमित नहीं रहा, इन खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है।
नहीं, पिकल बॉल का तो देखिए एक क्रेज और कल्चर एकदम से आया है, क्योंकि आप हम देखते हैं कि हमारे घरों के आसपास भी पिकल बॉल कोर्ट्स खुलने लग गए हैं, और ये पहले एक रिक्रिएशनल और लेजर स्पोर्ट की तरह देखते थे, कि जहां पर आपने शाम को कुछ चंद घंटे बिताए पिकल बॉल खेल के आपने एंजॉय किया, लेकिन अब पिकल बॉल को बहुत सीरियसली ले रहे हो। और खासतौर से देखिए इसका सबसे बड़ा जो फर्क पड़ा है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री उन्होंने पिकल बॉल एसोसिएशन को मान्यता दे दी है, तो इससे कई खिलाड़ी अब पिकल बॉल से एज ए सीरियस स्पोर्ट जुड़ रहे हैं।
बात कर लेते फुटबॉल पर। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज ईस्ट बंगाल और बेंगलुरु का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 2-1 की बढ़त बना ली है। अंक तालिका में ईस्ट बंगाल चौथे और बेंगलुरु पांचवें स्थान पर है। बोल्डर्स क्लासिक गोल्फ टूर्नामेंट में आज शुभंकर शर्मा ने बेहतरीन बढ़त हासिल की। 1 करोड़ रुपए की तीसरे दौर में 8-64 का शानदार कार्ड खेलकर 7 शॉट की विशाल बढ़त हासिल की। चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि मुंबई इंडियंस ने 15वें ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 140 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। सभी जी आप हमारे स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर हमारे साथ चर्चा की, इसके लिए आपका धन्यवाद।
धन्यवाद प्रशांत जी।
और श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।